स्वागत है आपका नमस्कार भारत में, मैं हूं इकबाल अहमद। तारीख 18 मई और दिन बुधवार। 9/11 हमलों के लिए सऊदी अरब पर मुकदमा करने के बिल को अमरीकी सीनेट की मंजूरी।
This is simply designed to provide these families access to justice that every other American family can seek in a court of law. They still have to make the
अमर सिंह और बेनी प्रसाद वर्मा की सपा में वापसी, दोनों को राज्यसभा की टिकट। केरल में बीफ खाने के चलन पर एक खास रिपोर्ट।
बीफ है जो सबको एक साथ लेके आते हैं, एक टेबल में मुसलमान रहेगा, हिंदू रहेगा, क्रिश्चियन रहेगा, बगैर कास्ट का, बगैर रिलीजन, बगैर पॉलिटिकल डिफरेंसेस
और भी बहुत कुछ, लेकिन उन सबसे पहले सुनते हैं विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार निखिल रंजन से। अमरीकी संसद के ऊपरी सदन ने ऐसा बिल पास कर दिया है जो 11 सितंबर के पीड़ित परिवारों को सऊदी सरकार के खिलाफ मुकदमा करने का अधिकार देता है। पिछले कुछ महीनों से इस बिल को लेकर दोनों देशों में खींचतान मची हुई है। सऊदी अरब ने इसके खिलाफ अमरीका को चेतावनी दी थी, जबकि राष्ट्रपति बराक ओबामा ने इस बिल को वीटो करने का भरोसा दिया था। ये बिल अब निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में भेजा जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय पुलिस इंटरपोल ने पठानकोट हमले के मामले में प्रतिबंधित चरमपंथी संगठन जैश ए मोहम्मद के प्रमुख मौलाना मसूद अजहर और उनके भाई रऊफ के खिलाफ दोबारा रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया है। मसूद अजहर और अब्दुल रऊफ के खिलाफ पहले से ही रेड कॉर्नर नोटिस है। अजहर के खिलाफ ये नोटिस 2001 में भारतीय संसद पर हुए हमले के मामले में जारी हुआ था, जबकि 1999 में IC-814 विमान के अपहरण के मामले में अब्दुल रऊफ के खिलाफ भी रेड कॉर्नर नोटिस जारी हुआ था। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने अमरीका पर आरोप लगाया है कि वो उनके देश में विदेशी सेना भेजने की साजिश रच रहा है। उन्होंने वेनेजुएला के लोगों से आज सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करने को कहा है। निकोलस मादुरो ने कहा,
Sobre Venezuela se está montando un escenario de violencia.
वेनेजुएला में हिंसा की पटकथा लिखी जा रही है, जिसका उद्देश्य यहां सैन्य स्वरूप वाले विदेशी घुसपैठ को उचित ठहराना है। राष्ट्रपति मादुरो के शब्द। राष्ट्रपति मादुरो का आरोप है कि अमेरिका उन्हें सत्ता से हटाना चाहता है। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। संयुक्त राष्ट्र के एक शीर्ष अधिकारी ने चेतावनी दी है कि जंग में घिरे यमन के 75 लाख लोग भोजन की कमी से जूझ रहे हैं और वो भुखमरी की कगार पर पहुंचने वाले हैं। यमन का दौरा करने के बाद मानवीय मामलों के जुड़े बड़े अधिकारी जॉन गिग ने कहा कि यमन के लाखों लोगों के लिए दान देने वाले लोगों में भारी कमी आई है। गिग का कहना है कि यमन वासियों को खाने के अलावा साफ पानी और स्वास्थ्य सेवाओं की भी जरूरत है। फ्रांस की दंगा निरोधी पुलिस ने श्रम कानूनों में बदलाव का विरोध कर रहे लोगों पर बल प्रयोग किया है। प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले दागे गए, इन लोगों ने पथराव किया था और सुरक्षा बलों से भिड़ गए थे। प्रदर्शनकारियों के साथ सहयोग करने के लिए ट्रक ड्राइवरों ने सड़कों पर जाम लगा दिया और ईंधन के साथ ही खाने पीने की चीज़ों की भी सप्लाई रोक दी है। पूरे फ्रांस में ट्रेन ड्राइवर भी इनके समर्थन में हड़ताल पर चले गए हैं। उधर राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलान ने कहा है कि वो श्रम बाजार में सुधारों को लागू कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उनका दावा है कि इससे नौकरियां पैदा होंगी। जर्मनी की एक अदालत ने हास्य कलाकार जॉन बोरमान को तुर्की के राष्ट्रपति पर लिखी कविताओं का पाठ नहीं करने को कहा है। बीबीसी समाचार।
एक बार फिर स्वागत है आपका कार्यक्रम नमस्कार भारत में, मैं हूं इकबाल अहमद। आज है मई की 18 तारीख और दिन बुधवार। इस वक्त हो चले हैं 6:33:47 और आप जब अपने दिन की शुरुआत कर रहे हैं, अपने काम पर जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको दूसरी दुनिया की तरफ ले चलते हैं अमरीका, और उसी से करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत। अमरीकी संसद के ऊपरी सदन सीनेट ने उस विवादास्पद बिल को अपनी मंजूरी दे दी है जिसके तहत अमरीका में 9/11 हमलों में मारे गए लोगों के परिजनों को सऊदी अरब पर मुकदमा करने का हक हासिल हो जाएगा। हालांकि अभी इस बिल को कानून बनने तक का सफर तय करना बाकी है और अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा कह चुके हैं कि वो अपने खास अधिकारों का इस्तेमाल कर इस पर वीटो लगा देंगे। बीबीसी संवाददाताओं की भेजी रिपोर्ट का सार सुनिए निखिल रंजन से।
अमेरिका पर 9/11 हमले के पीड़ितों को सऊदी सरकार के खिलाफ मुकदमा करने का अधिकार देने वाला बिल सीनेट ने पास कर दिया है। पिछले कई महीनों से सऊदी अरब और अमेरिका के बीच इस बिल को लेकर खींचतान मची हुई है। जस्टिस अगेंस्ट स्पॉन्सर्स ऑफ टेररिज्म एक्ट को अब निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में भेजा जाएगा। अगर ये बिल कानून में तब्दील हो गया तो हमले के पीड़ितों के परिवार सऊदी सरकार के किसी भी ऐसे सदस्य के खिलाफ मुकदमा कायम कर सकेंगे जिनकी इन हमलों में भूमिका मानी जा सकती है। सऊदी सरकार ने अमरीका को इस बिल के खिलाफ चेतावनी दी थी, लेकिन सीनेटर जॉन कार्नाइन ने कहा है कि इससे सऊदी अरब और अमरीका के रिश्तों पर असर नहीं होगा।
This is simply designed to provide these families access to justice that every other American family can seek in a court of law.
ये इस तरह से बनाया गया है जिससे कि इन परिवारों को ठीक उसी तरह से न्याय मिल सके जैसे कि दूसरे अमरीकी परिवार को अदालत से मिलती है। उन्हें अभी मुकदमा करना है और उस पर फैसला जज या ज्यूरी करेगी, लेकिन हमारा कहना है कि उन्हें मुकदमा करने से रोका नहीं जाना चाहिए। मैं नहीं मानता कि ये सऊदी अरब से हमारे रिश्तों के लिए नुकसानदेह होगा। सीनेटर जॉन कार्नाइन के शब्द। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और पेंटागन पर हुए हमले में करीब 3,000 लोग मारे गए थे। हमले में इस्तेमाल विमानों का अपहरण करने वाले 19 लोगों में 15 सऊदी नागरिक थे। सऊदी अरब 2001 में हुए इन हमलों के पीछे अपनी किसी भूमिका से इनकार करता है। सऊदी अरब के विदेश मंत्री ने चेतावनी दी है कि इसके नतीजे में सरकार अमरीकी निवेश से अपने हाथ खींच सकती है। 2004 में 9/11 आयोग की रिपोर्ट में कहा गया था, इस बात के कोई सबूत नहीं है कि सऊदी सरकार ने एक संस्था या किसी वरिष्ठ सऊदी अधिकारी ने स्वतंत्र रूप से उस संगठन को मदद दी थी जिसने हमला किया। व्हाइट हाउस के एक प्रवक्ता ने कहा है कि अमरीकी राष्ट्रपति इस बिल को लेकर खासे चिंतित हैं और इस बात की कोई उम्मीद नहीं कि वो इस पर दस्तखत कर इसे कानून बनने देंगे। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जोश अर्नस्ट।
दिस लेजिस्लेशन वुड चेंज लॉन्ग स्टैंडिंग इंटरनेशनल लॉ Regarding sovereign immunity.
ये बिल लंबे समय से चले आ रहे संप्रभुता बचाव से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय कानून को बदल देगा। अमरीकी राष्ट्रपति को इस बात की अभी चिंता है कि ये बिल दुनिया भर के न्यायतंत्र में अमरीका को कमजोर कर देगा। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जोश अर्नस्ट के शब्द। अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा था कि वो इस बिल को वीटो कर देंगे और ऐसे में इस बिल का कानून बन पाना बेहद मुश्किल दिखता है, लेकिन इसने सऊदी सरकार की चिंता जरूर बढ़ा दी है।
ये थे निखिल रंजन और इसने सऊदी सरकार की चिंता बढ़ा दी है बता रहे थे। तो इस बिल के बारे में और ज़्यादा जानकारी लेने के लिए सीधे चलते हैं वॉशिंगटन, जहां मौजूद हैं बीबीसी संवाददाता ब्रजेश उपाध्याय। ब्रजेश, ये बताएं कि क्या इस बिल को आसानी से पास करा लिया जाएगा अमरीकी संसद में?
देखें, इस बिल को कानून बनने से पहले प्रतिनिधि सभा में पारित होना है और फिर इस पर राष्ट्रपति के दस्तखत होने हैं, तभी यह कानून बन सकेगा। ओबामा प्रशासन, जैसा कि आपने अभी निखिल की उस रिपोर्ट में भी आपने ये सुना, कि इस बिल के खिलाफ रहा है, क्योंकि उनका मानना है कि इससे दुनिया के दूसरे देशों में भी अमेरिका पर मुकदमा दायर करने के लिए दरवाजा खुलेगा। अमेरिका के जो सहयोगी देश हैं, वहां के जो अदालत हैं, उनकी मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं, और राष्ट्रपति ओबामा ने कहा है कि वो इसे रोकने के लिए अपने वीटो पावर का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर ये बिल 2/3 बहुमत से पास हो जाए तो वीटो पावर कारगर नहीं रहेगा। और खास बात यह है कि इस बिल को डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन दोनों का समर्थन मिल रहा है। 11 सितंबर का हमला, जैसा कि आप जानते हैं, एक काफी सेंसिटिव, संवेदनशील मामला है। यहाँ बहुत सारे लोगों की ये सोच है कि उस हमले में सऊदी अरब की भी भूमिका थी, और इस मामले पर कोई सेनेटर या कांग्रेस का सदस्य जो है वो जनता के खिलाफ नहीं दिखना चाहेगा। 11 सितंबर के हमले पर 2002 की जांच जो रिपोर्ट बनी थी उसके 28 पेज पन्ने सऊदी अरब से जुड़े हुए हैं और उन्हें अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया है। ओबामा प्रशासन ने कहा है कि वो इसे सार्वजनिक करेंगे, क्योंकि बहुत लोगों का मानना है कि उस पन्नों में सऊदी अरब की तरफ उंगली उठी है। देखने वाली बात अब ये होगी कि उन पन्नों को जारी करके ओबामा इस कानून को रोकने की एक नई दलील पेश कर सकते हैं, कर सकती है या नहीं, और या फिर उसके बावजूद वो नाकाम रहेंगे।
लेकिन ब्रजेश, जो सऊदी अरब की चेतावनी आती रही है कि वो अपने पैसे वापस ले लेगा, वो निवेश नहीं करेगा, इन चेतावनी का क्या अमरीका पर कोई असर पड़ेगा?
देखिए, एक तो जो पहले जिस तरह के बयान सऊदी अरब के हवाले से आ रहे थे, उसके बाद आज उन्होंने ये बयान दिया है कि उन्होंने कोई इस तरह की धमकी नहीं दी थी कि 750 अरब डॉलर का जो बॉन्ड अमरीकी बॉन्ड्स में उन्होंने निवेश कर रखा है उसे वो बेच देंगे, क्योंकि वो एक इतनी बड़ी रकम है कि उससे हड़कंप मच सकता है दुनिया के बाजारों में। दूसरी बात यहाँ पर ये देखने वाली बात है कि ये 1976 का जो एक कानून है जिसके तहत दूसरे देशों की सरकारों को अमरीकी अदालत में घसीटे जाने से रोका गया है, उसमें बदलाव करने की कोशिश कर रहा है ये कानून। इसके तहत आतंकवाद से जुड़े मामलों को अपवाद की तरह पेश करके अमरीकी जनता को अधिकार दिया जा रहा है कि वो मुकदमा दायर कर सके, और इसके तहत अदालत चाहे तो आतंकवाद से जुड़े मामलों में उस देश की जो वित्तीय संपत्ति है अमरीका में उन्हें फ्रीज कर सके। तो ये एक जो काफी हद तक कुल मिलाकर ये आप कह सकते हैं कि टकराव का रास्ता इससे जरूर खुलता हुआ नजर आ रहा है अगर ये बिल पास हो जाता है तो, और सऊदी अरब के साथ जो तीखे हो रहे संबंध हैं इन दिनों अमेरिका में खासतौर से कांग्रेस में उसकी तरफ भी इशारा करता है।
जी बहुत शुक्रिया ब्रजेश, लेकिन आप जाएं उससे पहले बस बहुत ही संक्षेप में, चूंकि हमारे श्रोता को अमेरिकी चुनाव में भी बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रहती है, आज केंटकी और ओरेगन में प्राइमरीज होने वाले हैं उसके बारे में बहुत ही संक्षेप में कुछ बता दें।
जी हाँ, केंटकी के परिणाम अभी भी आए नहीं हैं, तकरीबन 96% वोटों की गिनती हो चुकी है, और अगर अपने श्रोता आईपीएल मैच देख रहे हो तो उसको छोड़ के वो इसे देखना शायद पसंद करें, क्योंकि बस 1012 वोट के अंतर से बर्नी सैंडर्स आगे चल रहे हैं फिलहाल, और ये परिणाम किसी भी तरफ जा सकता है। ओरेगन के परिणाम काफी देर से आएंगे, लेकिन यहाँ ये भी बता दूं कि इन दोनों राज्यों के परिणाम कुछ भी हो, हिलरी क्लिंटन अभी बहुत डेलीगेट्स की रेस में काफी आगे चल रही हैं और वो इन परिणामों से कुछ बदलता हुआ नहीं नजर आ रहा।
बहुत बहुत शुक्रिया ब्रजेश आपका इन तमाम जानकारी के लिए।
खबर सच है अगर बीबीसी पर है।
और अब बात उन खबरों की जिन पर रहेगी आज हमारी नजर।
भारतीय रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर आज से 4 दिनों की यात्रा पर ओमान और संयुक्त अरब अमीरात जाएंगे। भारत ऊर्जा से भरे पूरे मध्य पूर्व के देशों के साथ अलग अलग क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की कोशिश में है। भारतीय रक्षा मंत्री की यात्रा ओमान से शुरू हो रही है। यूएई में रक्षा मंत्री की यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब दोनों देश की वायु सेनाएं संयुक्त अभ्यास कर रही हैं। नेपाल में मधेशी आंदोलन के नेता आज आगे की रणनीति पर विचार करने के लिए बैठक करेंगे। नए संविधान से असंतुष्ट मधेशी नेता अलग अलग तरीकों से सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश में हैं। आईपीएल 2016 का 50वां मैच आज बंगलुरु में खेला जाएगा, जिसमें रॉयल चैलेंजर्स की भिड़ंत किंग्स इलेवन से होगी। अमरीकी विदेश मंत्री जॉन केरी आज काहिरा जाएंगे। यहाँ मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह के साथ मुलाकात में क्षेत्रीय और आपसी मुद्दों पर चर्चा होगी। इसके बाद जॉन केरी आज ही ब्रसल्स के लिए रवाना हो जाएंगे, जहाँ नाटो देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक होने वाली है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने अमरीका पर आरोप लगाया है कि वह उनके देश में विदेशी सेना भेजने की साजिश रच रहा है। उन्होंने वेनेजुएला के लोगों से आज सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करने को कहा है।
और अब बात उत्तर प्रदेश की। समाजवादी पार्टी ने अमर सिंह को अपना राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया है, राज्यसभा चुनाव का उम्मीदवार बनाया। समाजवादी पार्टी ने करीब 6 साल पहले अमर सिंह को बाहर का रास्ता दिखा दिया था, लेकिन कल जब समाजवादी पार्टी की ओर से 7 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की गई जिन्हें राज्यसभा का चुनाव लड़ना है, तो उनमें बेनी प्रसाद वर्मा और अमर सिंह दोनों के नाम शामिल थे। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवारों के चयन को लेकर समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा है। सुनिए रिपोर्ट अशोक कुमार की आवाज़ में।
कहते हैं कि राजनीति में न कोई स्थायी दोस्त होता है और न स्थायी दुश्मन। उत्तर प्रदेश में सत्ताधारी समाजवादी पार्टी इस कहावत पर पूरी तरह अमल करती दिखाई दे रही है। बीते हफ्ते बेनी प्रसाद वर्मा की कांग्रेस से समाजवादी पार्टी में वापसी हुई, जबकि बेहद तल्खी के बीच करीब 6 साल पहले पार्टी से बाहर कर दिए गए अमर सिंह के भी कल समाजवादी पार्टी में लौटने का रास्ता तैयार कर दिया गया। सपा नेता शिवपाल यादव ने राज्यसभा चुनाव के लिए पार्टी के जिन 7 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कल किया, उनमें बेनी प्रसाद वर्मा और अमर सिंह दोनों के नाम शामिल हैं।
राज्यसभा की सूची में पहला नाम है श्री बेनी प्रसाद वर्मा, दूसरा नाम है श्री अमर सिंह, तीसरा नाम है संजय सेठ, चौथा नाम है सुखराम सिंह यादव, पांचवा नाम है रेवती रमन सिंह, छठवां नाम है श्री विशंबर प्रसाद निषाद, सातवां नाम है अरविंद प्रताप सिंह।
अमर सिंह को घर वापसी का टिकट भले ही कल थमाया गया हो, लेकिन उनकी समाजवादी पार्टी में दोबारा आने की चर्चा लंबे समय से थी। हालांकि इसे लेकर पार्टी के अंदर दो धड़े बने होने की बात कही जा रही थी, लेकिन अमर सिंह ने बीते महीने बीबीसी से बातचीत में बदलते सियासी समीकरणों का संकेत दिया था। उस वक्त अमर सिंह ने कहा था,
देखिए मुलायम सिंह जी ने सार्वजनिक बयान दे दिया है कि जया बच्चन दल में है और मैं उनके दिल में हूँ, तो दल टूटते हैं, दल बिखरते हैं, दल बनते हैं, दल बिगड़ते हैं, लेकिन दिल तो जब तक जीवन रहता है धड़कता है।
मुलायम सिंह ने दिल के साथ अब अपने दल के दरवाजे भी अमर सिंह के लिए खोल दिए हैं। विपक्षी पार्टियां बेनी प्रसाद वर्मा और अमर सिंह को राज्यसभा चुनाव में उम्मीदवार बनाए जाने के फैसले को लेकर समाजवादी पार्टी पर निशाना साध रही हैं। कांग्रेस नेता वीरेंद्र मदान ने इसे जातीय समीकरण साधने की कोशिश बताया। उन्होंने कहा,
2017 का चुनाव जो बिल्कुल सर पे है, समाजवादी पार्टी को ऐसा लगता हो कि बेनी प्रसाद वर्मा जी को लेके हम उत्तर प्रदेश के अंदर जो उनके समुदाय के वोट है उसको हासिल कर सकते हैं, अमर सिंह जी को लेकर जो उनके समुदाय के वोट है उनको हासिल कर सकते हैं, लेकिन इस उत्तर प्रदेश की जो आवाम है, जो जनता है, जो मतदाता है, उन्होंने पिछले 4.5-4 साल के अंदर देखा है कि जिस विश्वास के तहत उन्होंने समाजवादी पार्टी को सत्ता सौंपी थी, उनके साथ दगा हुआ, उनके साथ धोखा हुआ है। अब इस उत्तर प्रदेश का आवाम उन पर जल्दी विश्वास करने की स्थिति में नहीं है।
उधर भारतीय जनता पार्टी के नेता याद दिला रहे हैं कि जिस वक्त अमर सिंह और बेनी प्रसाद वर्मा समाजवादी पार्टी से अलग हो गए थे, उस वक्त उन्होंने मुलायम सिंह यादव और समाजवादी पार्टी पर किस कदर तीखे हमले किए थे। भारतीय जनता पार्टी के नेता विजय बहादुर पाठक कहते हैं,
सोचिए ये उस पिता का दर्द जिस पिता ने उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री कुर्सी अपने बेटे को सौंपी हो और एक साल बाद जब चुनाव में जाना हो तो उसको लग रहा है कि इनके भरोसे राज्य में सत्ता की वापसी नहीं होगी, इसलिए जुगत में है और उन लोगों को भी टिकट दिया। हम सबने देखा है और जाना है कि अमर सिंह ने कब मुलायम सिंह पर क्या टिप्पणी की, बेनी प्रसाद वर्मा ने उनके आतंकवादियों तक के रिस्पेक्ट की बात करी और उसके बावजूद उनको राज्यसभा का प्रत्याशी बनाया गया। लेकिन इन सारे स्थितियों के बावजूद 2017 में अखिलेश सरकार का कामकाज जनता की कसौटी पर होगा और जनता को निराश किया है अखिलेश सरकार।
सवाल विवादों में रहे संजय सेठ को उम्मीदवार बनाने और किसी मुसलमान को टिकट न देने पर भी उठाए जा रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी फिलहाल इनमें से किसी सवाल को अहमियत देने के मूड में नहीं दिखाई देती है।
ये थे अशोक कुमार और बकौल अमर सिंह के, वो मुलायम सिंह के दिल में रहते थे और अब दल में भी वो वापस आ गए। बहरहाल अब यूपी छोड़कर चलते हैं दक्षिण भारत की ओर। एक ओर जहां उत्तर भारत में कई राज्यों में बीफ या गोमांस को खरीदने और खाने पर आंशिक या पूरी तरह प्रतिबंध लगा है और इसके उल्लंघन पर सजा भी हो सकती है, वहीं दक्षिणी राज्य केरल में इसकी खुली छूट है। बल्कि केरल में बीफ के पकवान मुसलमान और ईसाई ही नहीं, हिंदू भी बहुत आम तौर पर खाते हैं और कई दफ़ा तो एक साथ बैठकर खाते हैं। इसी अलग चलन को समझने की कोशिश की केरल पहुंची बीबीसी संवाददाता दिव्या आर ने।
तो क्या खाना चाहिए हमको?
एक बीफ फ्राई, एक बीफ करी,
बीफ रोस्ट,
बीफ रोस्ट, बीफ ऊपर बीफ।
पूरी दावत होने वाली है मुझे लग रहा है। तो रंजीत और हरिलाल, मुझे आज आप लोग लेके आए हैं यहाँ के सड़क किनारे पापुट्टी होटल में आए हैं और ये दोनों ही बीफ के बहुत ही बड़े फैंस हैं और जैसा कि आपने नाम से अंदाज़ा लगा लिया होगा, धर्म से हिंदू हैं और इनसे हम ये बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि बीफ खाने वाले हिंदू होते हैं या मुसलमान या क्रिश्चियन।
ऐसे कुछ नहीं है, बीफ खाना क्रिश्चियन, हिंदू, मुस्लिम, एवरीवन ईट्स इट।
In my place, the people eat, and you know, it's like a daily food, like the beef.
मतलब आप ये कह रहे हैं कि वहाँ बहुत आम है आपके इलाके में और आप आते हैं कोट्टयम से जो कि सेंट्रल केरल में पड़ता है, कोची और त्रिवेंद्रम के बीच में, और आप कह रहे हैं कि यहाँ पे हमेशा से खाते रहे हैं, कोई ऐसी रिलीजियस इसका इंक्लिनेशन नहीं है। तो ये जो बीफ होता है ये कौन से एनिमल का मीट होता है, क्योंकि केरल में कोई बैन तो है नहीं लीगली, तो किसी भी काउ, बुल, बुलक, मतलब गाय, भैंस, बैल, किसी के भी स्लॉटर पर कोई बैन नहीं है।
बफलो मीट।
तो कहीं पे क्या काऊ मीट भी यूज होता है बीफ में?
मोस्टली नहीं, काऊ आई डोंट थिंक दैट काऊ इज यूज्ड।
अच्छा, अब ये बहुत सारा खाना आ गया है हमारे मेज पे। खाना शुरू करने से पहले ये बताइए कि आप अपने बीफ के प्यार को कैसे एक्सप्रेस करेंगे?
When we have it, it's like that we are in a heaven.
तो लेट्स एंटर द रियल हेवन। तो चलिए, उनको तो लगता है खा के कि वो स्वर्ग में पहुंच गए, तो अब मैं इनको रोकूंगी नहीं, आइए हम सब स्वर्ग में पहुंच जाएं। मुझे साफ हो गया कि केरल के लोगों को जितना मछली और सी फूड पसंद है उतना ही बीफ। इसीलिए जब उत्तर प्रदेश के दादरी में घर में बीफ रखने की अफवाह फैलने पर अखलाक नाम के इंसान को जान से मार दिया गया, तो असर केरल में भी हुआ। यहाँ लेफ्ट पार्टी के स्टूडेंट विंग SFI ने पूरे स्टेट में बीफ खाने के फेस्टिवल किए। SFI के अशोक കാനീർപുഴ കഹത്തെ
നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കണം എന്നുള്ളത്।
കേരളക്ക് കോയി ഏക അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഹംകു യേ കഹേ കി ഹം ക്യാ ഖാനാ ചെയ്യേ ക്യാ നഹീ ഖാനാ ചെയ്യേ ഐസാ കബി അലോ കർനാ നഹീ ചെയ്യേ। ഇസി വജഹ സേ SFI യഹാ ബീഫ് ഫെസ്റ്റിവൽ ഓർഗനൈസ് കിയേ ഇൻ ദ സെൻസ് ഓഫ് പ്രൊട്ടസ്റ്റ। കിസി കോ മാരാ ജാ രഹാ ഹൈ, ये हम सह नहीं सकते।
उन्हीं दिनों में दिल्ली पुलिस ने राजधानी में बने केरल हाउस की कैंटीन पर छापा मारा। वजह वही कि वहां बीफ परोसा जा रहा था। उस वक्त भी लेफ्ट पार्टियों ने इस पर खूब नाराजगी जाहिर की और साथ ही कहा कि वहां तो भैंस का मांस ही परोसा जा रहा था। केरल में 55% हिंदू आबादी होने के बावजूद ना गाय को पूजा जाता है, ना ही गाय, भैंस या बैल के बीफ को गैर हिंदू समझा जाता है।
बीफ है जो सबको एक साथ लेके आते हैं। एक टेबल में मुसलमान रहेगा, हिंदू रहेगा, क्रिश्चियन रहेगा, बगैर कास्ट का, बगैर रिलीजन, बगैर पॉलिटिकल डिफरेंसेस, जो भी है। अगर टेबल में एक प्लेट बीफ फ्राई और परोटा आ गया तो सब जन एक साथ हंस हंस के खा लेंगे।
कोची में ब्रंटन बोटयार्ड नाम के 4 सितारा होटल में एग्जीक्यूटिव शेफ मनोज नायर बताते हैं कि जैसे उत्तर भारत में इस्लामी शासकों की वजह से अवधि पकवान आए, वैसे ही पुर्तगाल और हॉलैंड से बीफ खाने का चलन केरल आया। मनोज बताते हैं कि जब केरल से बड़ी तादाद में लोग सऊदी अरब और आसपास के देशों में नौकरियों के लिए गए, तो इन्हीं लोगों के लिए केरल में बीफ बड़े रेस्टोरेंट में खास पकवान के तौर पर पेश किया जाने लगा। और अब ये इतना मशहूर हो गया है कि बीफ फ्राई सड़क किनारे के हर छोटे बड़े होटल में मिल जाता है। तो हम आए हैं केरल की एक बहुत ही चर्चित दुकान है, ये टॉडी मिलती है यहाँ पर, जिसको हम हिंदी में ताड़ी कहते हैं, और इसका नाम है मुलापंथल। और शिजू हमें यहाँ लेके आए हैं। शिजू बताते हैं कि यहाँ पे सिर्फ आदमी नहीं आते हैं बल्कि बहुत फैमिली भी आती है, इसलिए मेरा यहाँ आना ठीक था। तो शिजू ये बताओ कि अभी जाके आप ताड़ी पीने वाले हो, ताड़ी के साथ कुछ खाओगे?
ताड़ी के साथ खाता है, मतलब बीफ भी खाता है और मछली भी खाता है और लीवर भी खाता है।
अच्छा, तो यहाँ पे सब, जैसे आप भी हिंदू हो, सब तरह के लोग आते हैं और सब बीफ और सारी चीज़ें खाते हैं। तो अभी इसे सरकार बोल रही थी इंडिया के अलग अलग स्टेट्स में बीफ को बैन कर दिया, केरल में तो नहीं किया, तो अगर केरल में बैन हो गया तो कैसा लगेगा आप लोगों को?
वो ऐसा है कि इधर तो बंद करने के चांस ही नहीं है, क्योंकि केरल में सबसे ज़्यादा हिंदू लोग रहता है और सब लोग ये बीफ खाता ही है लोग, इसलिए वो बंद करने का चांस ही नहीं है वो। लेकिन वो बंद करेगा तो अच्छा भी नहीं लगता।
BBC केरल।
तो उत्तर भारत के कई राज्यों में बीफ जहां लोगों को बांटता ही है, वहीं केरल में एक तरह से इसमें कोई मतभेद नहीं है, और चाहे वो मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, चाहे हिंदू हो, सभी इसे शौक से खाते हैं। बहरहाल, अब वक्त हो चला अखबारों की समीक्षा का, और हमारे साथ ही निखिल रंजन तमाम अखबारों के साथ मौजूद हैं। जी निखिल, बताएं आपके अखबार क्या कहते हैं?
अखबारों में बहुत सी ऐसी खबरें हैं जिन्होंने हमारे कार्यक्रमों में भी जगह पाई थी, और जैसे कि आपको मसूद अजहर के खिलाफ इंटरपोल का नोटिस, और अमर सिंह को राज्यसभा भेजेगी समाजवादी पार्टी, और इसके अलावा कुछ और खबरें भी हैं। इसके अलावा जो आपको और कांग्रेस को
दिल्ली के
MCD चुनाव में जो जीत मिली है उसका जिक्र है। भाजपा को 3 सीटें मिली है और उसे BJP की हार के रूप में देखा जा रहा है। लेकिन मैं कुछ दूसरी खबरों का भी जिक्र कर दूं। जनसत्ता की जो एक लीड खबर है कि गांधीनगर की फॉरेंसिक जांच में सही निकले 4 वीडियो, ये JNU का जो मामला हुआ था 9 फरवरी को, उससे जो रिलेटेड वीडियो क्लिप्स दिखाई गई थी उसके बारे में ये खबर आई है। इसके अलावा जो है मैन बुकर प्राइज़ जो दक्षिण कोरियाई लेखिका हान को मिला है, उसको भी जगह दी है जनसत्ता ने अपने पहले पन्ने पर। और दैनिक भास्कर की जो लीड खबर है वो ये है कि जो सुब्रमण्यम स्वामी ने चिट्ठी लिखी है प्रधानमंत्री को, हमारे देश के जो गवर्नर हैं उनके बारे में, कि उनको हटाया जाना चाहिए और वो मानसिक रूप से भारतीय नहीं है, ये कहा है सुब्रमण्यम स्वामी ने। उनकी चिट्ठी भी बाकायदा इस अखबार ने अपने पहले पन्ने की सबसे बड़ी खबर बना करके छापी है। और ये जो नक्शा कानून में जो बदलाव किया है भारत ने, उससे पाकिस्तान के चिढ़ने की बात जो कल की लीड खबर थी उसको भी अखबारों ने प्रमुखता से जगह दी है। और एक खबर का मैं जिक्र करना चाहूँगा आपसे कि निरंकारी समाज की जो अगली गुरु होंगी माता सरविंदर कौर होंगी, इनके बारे में आपको पता ही होगा कि इनके जो बाबा हरदेव सिंह थे उनकी मौत हो गई थी एक सड़क दुर्घटना में।
बहुत शुक्रिया निखिल आपका अखबारों की समीक्षा के लिए। और अब अखबारों खेल समाचार का वक्त हो चला है। कल बारिश, आईपीएल में बारिश हुई लेकिन बावजूद उसके पुणे ने दिल्ली को हरा दिया डकवर्थ लुईस के तहत इसका फैसला हुआ, लेकिन इस बारे में और जानकारी दे रहे हैं आदेश कुमार गुप्त।
खेल समाचारों के साथ मैं हूं आदेश कुमार गुप्त। चीन में जारी थॉमस और उबेर कप फाइनल्स में भारतीय महिला टीम ने कल उबेर कप में जर्मनी को 5-0 से मात दी। महिला एकल वर्ग में साइना नेहवाल, पीवी सिंधु और ऋत्विका शिवानी ने अपने अपने विरोधियों को मात दी, तो महिला युगल वर्ग में ज्वाला गुट्टा और अश्विनी पोनप्पा की जोड़ी के अलावा एनसीके रेड्डी और पीवी सिंधु की जोड़ी भी जीतने में कामयाब रही। लेकिन पुरुषों के थॉमस कप मुकाबले में भारत को हांगकांग के हाथों 3-2 से हार का सामना करना पड़ा। पुरुष एकल वर्ग में अजय जयराम हांगकांग के एनजिका लॉन्ग एंगस से 21-13 हैं 21-12 से हारे, तो भारत की दोनों जोड़ियां भी पुरुष युगल वर्ग में हार गई। पुरुष एकल वर्ग में केवल बी साई प्रणीत हांगकांग के हु युन को और सौरभ वर्मा वेइनान को मात देने में कामयाब रहे। आज पुरुष वर्ग में भारत का सामना इंडोनेशिया से और उबेर कप में भारतीय महिलाओं का सामना जापान से होगा। उधर रियो ओलंपिक में 74 किलो भार वर्ग में नरसिंह यादव या सुशील कुमार कौन कुश्ती के मुकाबलों में जाए, इसे लेकर कल उच्च न्यायालय ने भारतीय कुश्ती महासंघ को निर्देश दिया कि बीजिंग ओलंपिक के कांस्य और लंदन ओलंपिक के रजत पदक विजेता सुशील कुमार की बात सुनी जाए। अदालत ने इस मामले की सुनवाई की अगली तारीख 27 मई तय की है। उल्लेखनीय है कि सुशील कुमार ट्रायल की मांग कर रहे हैं। वहीं हॉकी इंडिया ने 10 से 17 जून तक लंदन में होने वाली बेहद महत्वपूर्ण चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारत की कमान गोलकीपर पी शिरजेश को सौंपी है, जबकि सरदार सिंह और रुपिंदर पाल सिंह को विश्राम देने का फैसला किया गया है। उधर आईपीएल 9 में कल विशाखापट्टनम में राइजिंग पुणे सुपर जॉइंट्स ने दिल्ली डेयरडेविल्स को डकवर्थ लुईस नियम के आधार पर 19 रन से हरा दिया। कल पुणे के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया, जिसे उनके गेंदबाजों ने सही साबित करते हुए दिल्ली डेयरडेविल्स को निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट पर 121 रन पर रोका। एडम जैम्पा ने 21 रन देकर 3 और अशोक डिंडा ने भी 20 रन देकर 3 विकेट हासिल किए। दिल्ली के करुण नायर ने 41 और क्रिस मॉरिस ने नाबाद 38 रन बनाए। इसके बाद जब पुणे बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरी तो जब 11 ओवर के बाद उनका स्कोर 1 विकेट खोकर 76 रन था, तभी बारिश शुरू हो गई और मैच रोकना पड़ा। डकवर्थ लुईस नियम के आधार पर तब तक पुणे को जीत के लिए 58 रन ही बनाने थे, अंततः वो 19 रन से जीत गई। अजिंक्य रहाणे 42 रन बनाकर नाबाद रहे।
और जाते जाते एक बार फिर सुन लेते हैं प्रमुख समाचार क्या कहते हैं।
बीबीसी समाचार। अमरीकी संसद के ऊपरी सदन ने ऐसा बिल पास कर दिया है जो 11 सितंबर के पीड़ित परिवारों को सऊदी सरकार के खिलाफ मुकदमा करने का अधिकार देता है। अंतर्राष्ट्रीय पुलिस इंटरपोल ने पठानकोट हमले के मामले में प्रतिबंधित चरमपंथी संगठन जैश ए मोहम्मद के प्रमुख मौलाना मसूद अजहर और उनके भाई अब्दुल रऊफ के खिलाफ दोबारा रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने अमरीका पर आरोप लगाया है कि वो उनके देश में विदेशी सेना भेजने की साजिश रच रहा है। संयुक्त राष्ट्र के एक शीर्ष अधिकारी ने चेतावनी दी है कि जंग में घिरे यमन के 75 लाख लोग भोजन की कमी से जूझ रहे हैं और वो भूखमरी की कगार पर हैं। फ्रांस की दंगा निरोधी पुलिस ने श्रम कानूनों में बदलाव का विरोध कर रहे लोगों पर बल प्रयोग किया है। बीबीसी समाचार।
तो नमस्कार, भारत की यह सभा यहीं समाप्त होती है। आज स्टूडियो की जिम्मेदारी संभाले शाकिर आलम ने। आपसे अगली मुलाकात होगी अभी से ठीक एक घंटे बाद यानी 8 बजे कार्यक्रम विश्व भारती में। लेकिन पल पल बदलती खबरों के लिए आप 24 घंटे आ सकते हैं हमारी वेबसाइट bbchindi.com पर। और अब इकबाल अहमद को अपने तमाम साथियों के साथ दीजिए इजाज़त। नमस्कार।